ईरानी संस्कृति और कला।
श्रोताओं, कार्यक्रम ईरानी संस्कृति और कला की यह कड़ी स्वाति और सैयद मेहसाम लेकर हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में इतिहास पूर्व ईरानी वास्तुकला के अवशेष पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये प्रयास पसंद आएगा।
ईरान में इतिहास पूर्व से संबंधित कला व वास्तुकला के जो बड़े अवशेष बरामद हुए वो दक्षिण पश्चिमी ईरान के शूश क्षेत्र में खुदाई के दौरान बरामद हुए। वर्षों तक इन अवशेषों के स्रोत का पता नहीं था क्योंकि शूश में बरामद अवशेष मेसोपोटामिया की सभ्यता वाले क्षेत्रों में प्राप्त अवशेषों से बहुत मिलते जुलते थे, लेकिन हालिया दशकों में ईरान के अनेक क्षेत्रों में खुदाई के दौरान ये बात स्पष्ट हुई कि शूश में बरामद अवशेष ईरान के संपूर्ण पठारी और आसपास के क्षेत्र में मौजूद सभ्यता का हिस्सा थे।
शूश के चार बड़े टीलों में ईरान की विगत की वास्तुकला के अवशेष मुख्य शहर, केंद्रीय दुर्ग, शाही महल और आम घरों के हैं। इस क्षेत्र में 1891 में खुदाई शुरू हुई, जिसके दौरान इस क्षेत्र में बहुत से अवशेष बरामद हुए। इसके अलावा नहावंद के निकट गियान टीले, काशान के निकट सियल्क टीले, गुरगान के निकट तुरंग टीले, दामगान के निकट हेसार टीले, रय के निकट चश्मे अली और लोरिस्तान क्षेत्र में खुदाई हुई, जिससे प्राचीन ईरान की मूल्यवान सभ्यता का पता चलता है। ये सभी इलाके उस क्षेत्र में मौजूद हैं जिन्हें ईरान का पठारी क्षेत्र कहा जाता है।
बरामद हुए अवशेषों के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में 1000 साल तक सांस्कृतिक दृष्टि से समानता पाई जाती थी, जिसका इन क्षेत्रों से बरामद हुए मिट्टी के बर्तनों और तक्षण कला के नमूनों से पता चलता है। 1000 साल तक जारी ये सांस्कृतिक समानता तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में खत्म हो गई, जिसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ था।
माद और पार्स के आने से पहले और लगभग 1000 साल ईसा पूर्व तक ईरान का इतिहास इलामी इतिहास कहलाता है। हमारे पास इलामी दौर से संबंधित जो जानकारियां हैं वे सिर्फ उनके उपासना स्थलों के बारे में हैं। कुछ उकेरे हुए चित्रों से पता चलता है कि ये उपासना स्थल चौकोर होते हैं और उसे ऐसे विशाल ढांचे के ऊपर बनाया जाता था जिसमें बरामदा होता था। सामने वाले भाग में रोशनदान बने होते थे, उसके पिछले भाग में संभवतः ऐसी सीढ़ियां होती थी जिससे उपासना स्थल में दाखिल होते थे, हालांकि अब उसके चिन्ह दिखाई नहीं देते। इन अवशेषों के अग्रभाग में दरवाजे की दो चौखटें दिखाई देते हैं। बाएं हाथ वाले चौखटे पर नरकुल का एक पर्दा पड़ा है जो सूरज की किरणों को सीधे पड़ने से रोकता है। सीधे हाथ पर भी दरवाजे का चौखटा दिखाई देता है। इन उपासना स्थलों की एक आकर्षक विशेषता यह है कि उपासना स्थलों की दीवार के दोनों ओर तीन बड़ी सींगें लगी हुई हैं।
इलामी वास्तुकला पश्चिम एशिया की निचली भूमि की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल बनी है। जिस क्षेत्र में लकड़ियां कंपाई जाती थीं, वहां गीली मिट्टी की ईंटों को सुखाकर इमारत में इस्तेमाल करते थे। इस वास्तुकला में घरों के कमरों की छतें अपेक्षाकृत ऊंची बनाई जाती थीं। घरों में छोटी छोटी खिड़कियां होती थीं जिनके दरवाजे घर के भीतर आंगन में खुलते थे और इस तरह घर में रहने वालों की निजता सुरक्षित रहती थी। दूसरे सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में सभी घर, यहाँ तक कि कुलीन वर्ग के लोगों के घरों के नक्शे इसी तरह के होते थे। आम घरों और कुलीन वर्ग के घरों में एक अंतर यह होता था कि कुलीन वर्ग के लोगों के घर के बीचों बीच में एक हाल होता था और उसी हाल से आंगन का रास्ता होता था।
पिरामिड के आकार की सीढ़ियों वाली इमारत, चुंगा जंबील या जिग्रेट इलामी वास्तुकला का स्पष्ट नमूना है जो कुछ हद तक सुरक्षित बचा है और इस जैसा कोई दूसरा नमूना अब तक नहीं मिला है। कुछ उकेरे हुए चित्रों से पता चलता है कि यह इमारत इलामी शासक उन्ताश गाल ने बनवाई थी। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह इमारत एक किले के बगल में बनवाई गई थी जिसके आसपास दो उपासना स्थल थे जहां धार्मिक संस्कार अंजाम दिए जाते थे। इस इमारत में ऐसे चित्र मौजूद हैं जिनमें दो सीढ़ीदार इमारतों के सामने एक मैदान में पुजारियों को बलि चढ़ाता हुआ चित्रित किया गया है। चुंगा जंबील ऐसी 5 मंजिला इमारत थी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं इमारत की मंजिल छोटी होती जाती है। पहला मंजिला चौकोर है जिसके बीचों बीच में लगभग 100 मीटर लंबा चौड़ा हॉल है। इस बात से मन में यह विचार आता है कि इस इमारत में नाना प्रकार के धार्मिक संस्कार अंजाम दिए जाते थे। हर मंजिल 4-4 सीढ़ियों से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन चुंगा जंबील की छत पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी की व्यवस्था की गई थी।
उपासना स्थल में दाखिल होने वाला भव्य गेट बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है। इस वास्तुकला में ईरानियों ने पहली बार मीनाकारी की हुई टाइल का इस्तेमाल किया है ताकि पीले रंग की ईंटें खूबसूरत लगें। इस इमारत में सबसे पुरानी जो मीनाकारी की हुई टाइल इस्तेमाल हुई वो चौकोर है। उपासना स्थल के सामने बने चबूतरे नीले रंग की मीनाकारी वाली ईंटों से ढके हुए हैं। इस उपासना स्थल से बरामद हुए टाइल के टुकड़े पौराणिक जानवरों के चित्र बने हुए हैं जो हखामनेशी शासनकाल की वास्तुकला में सजावट के रूप में दिखाई देते हैं। उपासना स्थल के गलियारों और सीढ़ियों पर अर्धचंद्राकार ताक आंतरिक सजावट में प्राचीन ईरान के वास्तुकारों की दक्षता व सफलता की गाथा बयान करते हैं। इसी तरह दुनिया में घर के पानी को साफ करने वाला सबसे पुराना तंत्र इसी स्थान पर बरामद हुआ है।
चुंगा जंबील इमारत के निर्माण का इतिहास लगभग 1265 वर्ष ईसा पूर्व है जो प्राचीन शहर दूर आंतेश के खंडर पर बना हुआ है। यह इमारत लगभग 52 मीटर ऊंची थी, लेकिन समय गुजरने और घर्षण के कारण इसकी ऊंचाई आधी रह गई है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है।
शूश शहर में इस उपासना स्थल से दूर उपनगरीय क्षेत्र में पुरातन विदों ने 3 महलों के अवशेष बरामद किए हैं कि इनमें से एक में कब्रें भी हैं। इन महलों में रहने वाले लोग इसी में दफन हो जाते थे और महल के सभी कमरों से सीढ़ियों के जरिए इस कब्रिस्तान में दाखिल होते थे। कब्रों को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है।
लेकिन दूसरे सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में कबीलों के उत्तर से ईरान की ओर पलायन के कारण बहुत सी चीज़ें जिनमें ईरान की वास्तुकला भी है बदल गई। चूंकि ये कबीले जंगल के पास में जीवन बिताते थे इसीलिए उन्होंने ईरानी वास्तुकला में लकड़ी के चलन को आम किया। इसके बाद से ईरानी घरों में लकड़ी और खम्भों का चलन आम हुआ। उनकी वास्तुकला में घर के केंद्र में हॉल होता था जिसमें खम्भे होते थे। पश्चिम उत्तरी ईरान के हसनलू में पुरातात्विक खुदाई के दौरान इस बात का पता चला है कि वास्तुकला की यह शैली विकसित रूप में ईरान में आई थी।
दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत से पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आरंभ तक के दौर को ईरान में अंधकारमय शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि ये दौर जातियों के पलायन, छोटी छोटी सरकारों के उदय और बड़े बड़े साम्राज्य के विघटन का दौर था।
लेकिन इस बीच इन सभी परिवर्तनों से बेफिक्र इलामी कलाकार के हाथ में शताब्दियों तक मामलों का नियंत्रण रहा और कुछ शताब्दियों के बाद दूसरे कबीलों ने उनका स्थान ले लिया। इन कबीलों में सबसे अहम सकाहा था जिनकी वास्तुकला के अवशेष और इसी प्रकार माद जाति की वास्तुकला के अवशेष के बारे में बताएंगे।